अजान की तरह
पालन वॉल्यूम। हरे कृष्णा, सभी से विनंती है थोड़ा शांति बनाए रखें। अभी यहां पर कथा शुरू होने वाली है। सूरत से आए हुए भक्तों से विनंती है, कृपा करके यहां पर कथा में बैठ जाइए। आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने मुझको बताया, और अलग अलग लोग यहां पर आए हैं, सबका स्वागत करते हैं। पुनः एक बार सबसे विनंती करता हूं, प्लीज आवाज कम कीजिए। जो दर्शन ले रहे हैं सामने आइए, बिना आवाज कीजिए दर्शन कीजिए। जो कथा में बैठना चाहते हैं कथा में बैठिए। 11 से 12 बजे तक ये कथा होगी और तत्पश्चात आरती होगी, और फिर तत्पश्चात सभी के लिए प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। बोलो बोलिए गोपी जन वल्लभ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी अतिथियों का भक्तों का आज के इस रविवार के कार्यक्रम में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी ये कथा 11 से 12 के बीच होगी और फिर 12 बजे भगवान की महाआरती होगी और फिर सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है और आगे का कार्यक्रम हमारे वॉलंटियर्स आपको बता देंगे। तो सर्वप्रथम जो भी लोग आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे सूरत से हैं, फिर वसई विरार भयंदर और अलग अलग जगह से लोग आए हैं, बड़ा ग्रुप्स जो आया है। दिल्ली के भी कुछ डिवोटीज हैं। दिल्ली के कितने लोग हैं यहाँ पे, कोई है? तो सभी का यहाँ पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक बड़ा निराला है, थोड़ा अलग है। आज का टॉपिक का नाम है कृष्णा द सर्वश्रेष्ठ चोर। भगवान क्या है? सर्वश्रेष्ठ चोर। मुझको याद है बचपन में एक बड़े प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनकी एक पिक्चर थी, नाम नहीं बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा। उस पिक्चर में बचपन में उस बच्चे के हाथ पर लिखा जाता है तेरा बाप चोर। तो बच्चे को बहुत दुख होता है और जब भी वो हाथ देखता है तो उसको याद आता है कि किसने मेरे हाथ पे लिखा। तो उस व्यक्ति को, उस छोटे बच्चे को बहुत दुख था कि मुझको या फिर मेरे पिताजी को चोर बोला। तो जीवन भर वो संघर्ष कर रहा था कि एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा कि मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं, एक साधारण व्यक्ति को कोई व्यक्ति कहता है कि अरे तू तो चोर है, अरे इसने चोरी की, अरे इसके खानदान में सब लोग ऐसे ही है। जब भी ऐसा कोई नाम दे देता है तो हमको बड़ा दुख होता है। दुख होता है कि नहीं? हाँ दुख होता है, क्योंकि एक स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसका गुणगान करें, लोग कहे कि देखो कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है, कितना सुंदर है, उसकी अच्छी अच्छी बातें करे, राइट। लेकिन जब उसके बारे में कुछ बुरा भला कहा जाता है, विशेष करके उसको एक चोर की उपाधि दी जाती है, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण जो सबसे बड़े व्यक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, उसको उनको भगवान को क्या कहा गया है? चोर नहीं, सबसे बड़े चोर। तो सोचिए भगवान कृष्ण को कैसा लगेगा। लेकिन कृष्ण जो है वो दुखी नहीं हो रहे, वो आनंद ले रहे। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों को उनमें आनंद आ रहा है भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में वर्णन करने। तो ये भगवान की महानता है कि अपने भक्तों को आनंद लेने के लिए वो खुद एक चोर की पदवी स्वीकार कर सकते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की महानता है। तो हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान सबसे बड़े चोर है। उसके पहले आज आप यहां पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। ये जो महीना है बहुत ही पावन महीना है। इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास। कितने लोग को मालूम था ये? कितने लोग ने आज पहली बार सुना इस महीने का नाम? वैसे ये महीने का नाम तो अगस्त है, तो पुरुषोत्तम मास क्या है? आपकी जानकारी में कहा जाता है कि इस साल 12 नहीं 13 महीने हैं, एक महीना ज्यादा है जिसको बोलते हैं अधिक मास। अभी प्रश्न ये उठता है कि भाई 12 महीने होते ही एक्स्ट्रा महीना कहां से आता है? तो ऐसा कहा जाता है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एक सोलार कैलेंडर होता है, मतलब जो सूर्य की गतिविधियों के आधार पर जो कैलेंडर बनता है वो है सोलार कैलेंडर। फिर वो आता है दूसरा लूनार, मतलब जो चंद्र की गतिविधियों के आधार पर जो कैलेंडर बनता है उसको बोलते हैं लूनार। तो आप देख रहे हैं दोनों के इसमें 10 दिन का फर्क है। जब चंद्र पूरी परिक्रमा करता है तो उसको 355 दिन लगते हैं, लेकिन सूर्य जब भी ये करता है तभी 365 दिन लगते हैं। तो ये जो 10 दिन का गैप है, 3 साल में 30 दिन हो जाते हैं और एक महीना हो जाता है। और वो 3 साल में, हर 3 साल में ये महीना आता है जिसको हम बोलते हैं अधिक मास, यानी के पुरुषोत्तम मास। तो जब ये महीना पहली बार आया तभी, जैसे हमारे शास्त्र में हर व्यक्ति को एक पर्सनालिटी माना गया है, जैसे जो 12 मन है तो 12 मन के भी कोई प्रतिनिधि है, तो वो भी एक व्यक्ति है। तो ये जो एक्स्ट्रा मंथ थे उनके प्रतिनिधि एक देवी थी। तो जब भी पता चला कि एक्स्ट्रा मंथ है तो इस महीने में तो कुछ मुहूर्त नहीं है, कुछ अच्छे कार्य करने हैं, कुछ विवाह करना है, कुछ अच्छे संस्कार करने हैं, तो अच्छा मुहूर्त नहीं है इस महीने में। तो वो जो देवी थी बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि लोग द्रुतकारने लगे, लोग कहने लगे अरे ये महीना तो कुछ काम का नहीं, इसमें ये कार्य नहीं कर सकते, इसमें कर्म कांड नहीं कर सकते। तो बड़ा दुख हुआ उनको। तो रोते रोते वो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, चलो हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। तो देवी भगवान कृष्ण के धाम चली गई गोलोक वृंदावन में, और गोलोक वृंदावन में जाकर रोने लग गई। तो भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं अरे तुम रो क्यों रही हो, मेरे धाम में कोई दुखी नहीं है। वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई पीड़ा ना हो। तो आप मेरे धाम में आए और रो रहे हो ऐसा मत करो, क्या तकलीफ है? तो उसने अपनी तकलीफ बताई कि कोई भी व्यक्ति मेरे महीने को धुतकार रहा है, मुझको रिजेक्ट कर रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, आज से आपके इस महीने का नाम जो है वो मेरे नाम से आएगा। और भगवान कृष्ण ने अपना नाम दे दिया और कहा कि आज से इस महीने को कहेंगे पुरुषोत्तम मास। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। जिस प्रकार से हम देखते हैं एक छोटा बच्चा है, अनाथ हो जाता है, उसके माता पिता गुजर जाते हैं, उसको अनाथ आश्रम में डाला जाता है। फिर अनाथ आश्रम में एक परिवार आता है जिनको कोई संतान नहीं होती और काफी धनवान परिवार है वो, तो उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं कि हम इस बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे, हम इस बच्चे को गोद ले लेंगे। तो जैसे ही उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो उसको अपने पिता का नाम मिल जाता है, उसको उसका धन भी मिलता है, संपत्ति मिलती है, पिताजी के गुण में आ जाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने इस देवी को, इस महीने को अडॉप्ट कर लिया और इस महीने में भगवान कृष्ण ने अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास, और कहा कि इस महीने में हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की कथा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की कथा का स्वादन करना चाहिए। इसलिए इस महीने में लोग अलग अलग कार्य करते हैं, उसमें एक है भगवान के नामों का जप करते हैं, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और श्रीमद् भागवतम की कथा इत्यादि का बहुत महत्व है। इसलिए इस अधिक मास में बहुत जगह पर भागवत कथा होती है। फिर दान देना का भी बहुत महत्व है, फिर भगवान को दीप दान करना, रोज शाम को यहाँ पर मंदिर में भगवान को दीप अर्पण किया जाता है, तो इसका भी बहुत महत्व है, और सबसे ज़्यादा जरूरी है भगवान कृष्ण का गुणगान करना। और जो भी व्यक्ति ये कार्य करता है उसको भगवान प्राप्त होते हैं और उनके अनेक जन्मों के जो पाप है वो पाप से मुक्त हो जाते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, पुरुषोत्तम मास की जय। तो जब हम भगवान के पास आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? जब हम भगवान के पास आते हैं तो क्या करना चाहिए, सेल्फी खींचना चाहिए, फोटो खींच के सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोलिए? आप लोग तो ऐसा मुंह बना रहे जैसे पहली बार मंदिर में आए हो, बोलिए प्रभु जी। प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको आपकी सेवा में लगाए, ठीक। और कोई उत्तर, और कोई? लगता है लोगों का मौन व्रत है यहां पर आज, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कहां से आए आप लोग? विरार से आए, कसम खा के आए कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले भगवान के सरेंडर हो जाना चाहिए और भगवान के गुणगान गाने चाहिए
पहले दिन में ही, देख के ही सरेंडर। आप तो उच्च कोटि के भक्त हैं प्रभु। और कुछ? यस, सबसे पहले नमन करके प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्ण सृष्टि के स्वामी है वो। सोचिए अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आते हैं तो कैसे लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे राष्ट्रगीत होता है तो सब लोग खड़े होते हैं, बराबर है, एकदम सर झुकाकर अपने देश को नमन करते हैं। उसी प्रकार से देश नहीं पूरे ब्रह्मांड के स्वामी यहाँ पर खड़े हैं, विराजमान हैं, तो हमको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए और तत्पश्चात भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपको भूल गया हूँ, कृपा करके मुझको आपकी सेवा में लगाइए। तो इस प्रकार से हमको भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करनी चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, ऐसे 10 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। पहला है संप्रथात्मिक, यानी कि डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, डायरेक्ट भगवान से बात करनी चाहिए। स्वदैन बोधिक, जब हम भगवान के सामने आते तो नम्रतापूर्वक कहना चाहिए कि तो मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, सब आप ही है, हा? सब आपसे आ रहा है। फिर अपने मन को काबू करने के लिए मन शिक्षा, विलापात्मिक, वैष्णव महिमा, इस प्रकार से अलग अलग वैष्णव के आदेश के अनुसार हमको भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारे एक बड़े आचार्य थे, उनका नाम था श्रील बिल्वा मंगल ठाकुर। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा है, उस भजन का नाम है चोराष्टकम। क्या नाम है? चोर मतलब सब जानते हैं, अष्टकम मतलब आठ श्लोक। आठ श्लोक जो एक चोर का वर्णन कर रहा है उसका नाम हो गया चोराष्टकम। तो आज हम एक चोर का वर्णन करेंगे जो है कृष्ण। तो सबसे पहले इस श्लोक में, इस अष्टकम में आठ श्लोक है और एक चोर के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और वो चोर कौन है? भगवान कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जैसे कि मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति को चोर बोला तो अच्छा नहीं लगेगा, भले व्यक्ति चोर हो, चोर को चोर बोला तो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण का गुणगान किया जा रहा है कि कैसे वो सर्वश्रेष्ठ चोर है, सर्वप्रसिद्ध चोर है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध डाकू थे, उसका नाम था डाकू भगत। क्या नाम था? तो डाकू भगत एक जगह पर आते हैं जहां पर कथा हो रही है, जैसे यहां पर कथा हो रही है। कितने लोग यहां पर आए हैं देखो, तो इतनी ज्यादा, जब इतनी ज्यादा भीड़ देखते हैं तो चोर को और आनंद आता है, क्योंकि उसको लगता है अरे मेरे तो ज्यादा घराक हो गए अभी तभी। और जब भी वो देखता है कि माताएं अच्छे अच्छे गहने पहन के आई हैं, अच्छा महंगा पर्स लेके आए हैं, प्रभु जी लोग महंगी घड़ी पहन के आए हैं, आप बोलोगे यार यार मैं कुछ प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं। लेकिन जब ऐसा होता है तो उसको क्या लगता है, हाँ इतने सारे लोग हैं, दो पांच का तो चोरी हो ही जाएगा। तो व्यक्ति आते हैं, जो डाकू होते हैं वो आते हैं चाकू वाकू लेके, कि अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं क्या करूंगा, उससे ले लूंगा। तो फिर इतने सारे लोग बैठे हैं कथा में, तो भी कथा के बीच में थोड़ी कुछ चोरी कर सकते हैं, जब भी भीड़ भाड़ होगी, धक्का मुक्की होगी तो उसमें कुछ कर सकते हैं। तो कथा चल रही तो वो साइड में बैठ के कथा सुन रहा था। तो कथा में जो कथाकार है एक छोटे बालक के बारे में बता रहा था। वो नन्ना बोला बालक को है, वो नंद महाराज का पुत्र है, वृंदावन में रहता है और उसके गले में वनमाला है, रत्नमाला है और कौस्तुभ मणि है, और इस प्रकार से अलग अलग रत्नों के बारे में वर्णन किया गया है। किसी को मालूम है वो बच्चा कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अभी सबको मालूम था क्योंकि वो लोग कथा सुन रहे थे आपके जैसे, लेकिन ये डाकू ने कभी कथा नहीं सुनी। तो डाकू के मन में क्या आया, अरे मैं यहां पर किसी का छोटा छोटा हाथ मारने आया हूं, सीधा वो बच्चे को ही उठा लूंगा, उसके गले में क्या है, कौस्तुभ मणि है, हाँ रत्नमाला है, इतने महंगे महंगे आभूषण है, और वो कहां का बच्चा है, एक वृंदावन का एक गांव का छोटा लड़का है, खेलते खेलते उसको उठा लूंगा, गले से निकाल लूंगा, काम हो गया। तो डाकू बोलता है अच्छा आइडिया है। फिर कथा समाप्त हुई, लोग गए प्रसाद पाने, तो ये कथाकार व्यासासन से नीचे उतर रहा था, तो डाकू ने कहा रुक जाओ, कहां जा रहे हो, आपसे बात करनी है। तो बोले बोलिए क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि वो लड़का किधर रहता है, वो छोटा बालक रहता किधर है वो बताओ, उसका एड्रेस बताओ। तो बोले किसका एड्रेस? अरे वही छोटा बालक, आपने बोला ना कौन से वन में रहता है, गले में रत्न वाला है, आभूषण है। तो बोले हाँ हाँ वो, हाँ क्या काम है? बोले काम क्या है, चाकू निकाला, मैं बहुत बड़ा चोर हूं, मुझको वो आभूषण चाहिए, चुपचाप बता दो नहीं तो गला काट दूंगा। तो अभी कथाकार को अपनी जान प्यारी थी, उसने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ वृंदावन में जाओ, मथुरा से 15 किलोमीटर वृंदावन है, वहां पे किसी को भी पूछो वो छोटे बच्चे का नाम, बच्चा बच्चा जानता है। तो बोला हाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, और वो आपने बोला था गले में माला वाला सब है ना? हाँ बहुत है, जाओ। तो वो चोर चला जाता है, एक कथाकार के गले में जान में जान आ जाती है कि भाई मैं तो बच गया, उधर जो होगा होगा। फिर ये व्यक्ति कंटिन्यूस उसके बारे में सोचता है कि कहाँ पे ये मेरे को बच्चा मिलेगा, कहाँ पे मैं उसके गले से वो माला निकालूंगा। तो इस प्रकार से उसके मन में बहुत ज्यादा लोभ था, लेकिन इतना लोभ था कि वो 24 घंटे उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। और फिर धीरे धीरे वृंदावन पहुंच जाता है, और वृंदावन जब भी पहुंचता है तो उसके हृदय में परिवर्तन होता है, और लोगों को पूछता है कि ये छोटा बच्चा कौन है, तो लोग बोलता है कौन सा बच्चा, वही नंद नंदन का लड़का, नंद महाराज का लड़का, यशोमती का लड़का, यशोदा नंदन, नंद नंदन। तो लोग कहते हैं हाँ हाँ वो जाओ जाओ उधर जाओ। फिर वो एक मंदिर में जाता है, और मंदिर में कृष्ण का मंदिर था, तो लोग बोलता है अरे ये नहीं छोटा बच्चा। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते थक जाता है, लोग बोलते हैं नहीं नहीं यही है। तो बड़ा दुखी हो जाता है, और कुछ खाता पीता नहीं है, और उसको भगवान कृष्ण स्वयं एक छोटे बालक के रूप में आते हैं, उसको दूध देते हैं, और दूध देने के बहाने उससे बात करते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, वो यहीं कहीं है, आपको जल्दी मिल जाएगा। तो बोले हाँ ऐसा है क्या। फिर वो दूध पी के सो जाता है, और उसको रात में सपने में वही बच्चा आता है और बोलता है कि वही बालक हूँ मैं, मुझको ढूंढ लो। और फिर जैसे उठता है तो उसको वही बालक दिखता है, खेलता है और उसको पकड़ता है, और जैसे ही पकड़ता है तो उसके सुंदर आभूषण को देखकर उसको आनंद आता है। लेकिन अभी उसको उसको लेने की आनंद नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को देख के इतने वो प्रभावित हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं, उसको लगता है कि यार ये आभूषण से भी कीमती ये बच्चा है, मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगा। तो फिर उसको कहने लगता है कि देखो बेटा मुझको माफ करना, मैं आया था तुम्हारे गलों के कीमती जो आभूषण लेने के लिए, लेकिन मुझको माफ कर देना, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं तुमसे लेने आया था, अभी मुझको बताओ मैं क्या सेवा करूं, मैं तुमको क्या दूं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं साक्षात भगवान कृष्ण हूं, और तुम यही वृंदावन में वास करो, और मेरी भक्ति और मेरे मेरे नामों का प्रचार करो। तो इस प्रकार से वृंदावन में वहीं स्थित हो जाते हैं वो, उनका हृदय परिवर्तन होता है, और बहुत बड़े संत बन जाते हैं, और उनका नाम हो जाता है शिला बिल्वा मंगल ठाकुर। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ये सुंदर श्लोक की रचना करते हैं, और उनका उनका नाम बिल्वा मंगल ठाकुर नहीं था, दूसरे डाकू भगत जो मैं बोल रहा था। फिर ये अलग अलग संत के रूप में सेवा करते हों, तो ये कहानी मैं बता रहा था। तो अभी हम आते हैं चौराष्टकम पे। तो जैसे कि मैंने कहा 8 श्लोक है, तो 8 श्लोक को हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहले 2 श्लोक में भगवान के प्रोफाइल के बारे में बताया है। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो जब भी आप कोई कंपनी में जॉब मांगने जाते हैं तो आप आपका बायोडेटा देते हैं, रिज्यूमे देते हैं। रिज्यूमे क्या, रिज्यूमे में क्या लिखा रहता है? हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे, मैंने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, फिर मैंने 4 साल इस कंपनी में काम किया है, फिर मैंने ये कार्य किया है। तो अभी यहां पर पहले 2 श्लोक में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की है, क्या क्या ऐसे काम किए जिससे वो प्रसिद्ध चोर की पदवी प्राप्त कर ली। फिर 3रे और 4थे श्लोक में कहा गया है कि भगवान में ऐसे और क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज है, और क्या क्या एक्सपर्टीज है। जैसे आप लोग बायोडेटा में लिखते हैं कि हाँ मुझको 8 प्रकार की भाषाएं आती है, मुझको टाइपिंग आता है, मेरा टाइपिंग स्पीड इतना फास्ट है, मुझको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, उस प्रकार से। तो यहां पर भगवान अपनी और एक्सपर्टीज के बारे में वर्णन किया गया। फिर 5वें और 6ठे श्लोक में आगे का क्या प्लान है भगवान का, भगवान और क्या क्या करते हैं वो भी बताया है। और 7वें और 8वें श्लोक में जिन्होंने ये अष्टकम लिखा है वो कह रहे हैं कि अभी वो उस चोर को कैसे पकड़े। जैसे कोई चोर आता है, अभी आपको मालूम है इसने चोरी की, तो हम बोलेंगे ना इस चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो और लूट मचाएगा। तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम
गोपांगणानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि।
तो क्या कहा गया यहां पर पहले श्लोक में? भगवान का पास्ट रिकॉर्ड। भगवान का पास्ट रिकॉर्ड क्या है? व्रज में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है, सबसे बड़े चोर है कौन? कृष्ण। क्या चुराते थे? नवनीत, माखन। जैसे पहले जब मैं छोटा था तो एक टीवी पे सीरियल आता था, इंडियाज मोस्ट वांटेड। तो यहां पर वृंदावन मोस्ट वांटेड चोर क्या है? कृष्ण। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। तो भगवान कृष्ण माखन चुराते थे। कोई बोलेगा अरे क्यों चुराते थे? कोई बताएगा क्यों चुराते थे? इस दुनिया में कोई चोर है क्यों चुराता है? बहुत गरीब है या उसके पास वो आइटम नहीं है। जैसे आजकल किसी का आईफोन चोरी हो जाता है, वो क्यों चुराया? क्योंकि उसके पास आईफोन नहीं है, उसको आईफोन चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास आईफोन की दुकान हो और वो जाके किसी की चोरी करे तो कैसा लगेगा? तो यहां पर भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, सब कुछ उनका है। गीता में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरद सर्वभूतानाम ज्ञातवा नाम शांति मृच्छति। भगवान कहते कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझसे आ रहा है और सब कुछ मेरी सेवा के लिए है, और जो इसको जानता है वो सबसे ज्यादा सुखी और उसके जीवन में शांति आएगी। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े व्यक्ति है चोरी क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलिए, कोई माताएं बताइए क्या राज है? बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं कि भगवान के पास तो बहुत पैसा है लेकिन उनके मित्रों के पास नहीं है, इसके लिए मित्रों को मक्खन खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास भी बहुत था। भगवान कृष्ण के पास, उनके पिता के पास कितनी गायें थी मालूम है आपको? 9 लाख गाय और इतनी प्रचुर महारत्ना में दूध, दही, मक्खन, पनीर, आप सोच नहीं सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनके दोस्त, उनके मित्रों के पास कुछ खाने को नहीं था, इसके लिए भगवान बोलते थे कि मुझको बहुत दया आ रही है, रुको रुको थोड़ा मक्खन चुराता हूं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ब्रज में इतनी दूध, इतनी मक्खन, इतना दही है कि ब्रज में एक जगह पे होली खेलते हैं दूध दही मक्खन से। सोचिए दूध का क्या भाव चल रहा है भाई देवे, दूध मक्खन दही कितना महंगा है। लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण के पास बहुत है। लेकिन यहां पर भगवान माखन क्यों चुराते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों का हृदय चुराते हैं। क्योंकि गोपियां जो है पूरे हृदय से प्रेम से मक्खन को मथती है और उससे मक्खन निकालती है और फिर उसको मटके में ऊपर रखती है और भगवान कृष्ण उसको चोरी करने लाते हैं। तो गोपियों, एक बार गोपियां सब लोग कंप्लेन करने यशोदा के पास जाती हैं कि हे ये यशोदा मई, आपका कान्हा हमारे घर पे आता है और माखन चुराता है, आप अपने लड़के को संभालते क्यों नहीं? तो मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आता है, बोलते हैं मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, कल से मैं उस लड़के को बांध के रख दूंगी, वो घर के बाहर ही नहीं निकलेगा, अगर घर के बाहर ही नहीं निकलेगा तो मक्खन क्या चुराएगा। तो जैसे ही सब गोपियां सुनती है तो बोलते हैं नहीं 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 ऐसा मत करो, अरे हम मक्खन इसीलिए बनाते ताकि आपका कान्हा आके चोरी करे। अभी इसका क्या मतलब है? तो ये भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और माखन चुराना तो एक बहाना है, वो अपने भक्तों का हृदय चुरा रहे हैं। तो व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगणानाम च दुकुल चोरम। फिर आता है अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। तो माखन तो चुरा रहे और फिर वस्त्र भी चुराते हैं। हाँ, गोपांगणानाम च दुकुल चोरम, सुना आपने भगवान की वस्त्र हरण लीला? तो अभी प्रश्न ये उठता है, अरे भगवान है ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं? किसी लड़कियों के कपड़े लेके भाग जाना, ऐसा कोई करता है? आज के तारीख में ऐसा कोई करे तो उसको जेल में डाल दे, अरे कैसा अभद्र व्यवहार हो रहा है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त है वो है गोपियां, और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण आदान प्रदान कर रहे हैं। और गोपियों के साथ ये आदान प्रदान की लीला कौन से उम्र में कर रहे हैं? जब भगवान 6 या 7 साल के थे। आपने देखा होगा 6 या 7 साल की उम्र पे लोगों को ये लड़का लड़की प्रेम के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन उस स्थान पर भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं। तो हमको जानना चाहिए कि ये सब लीलाएं साधारण नहीं है। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे दिव्य जन्म और मेरे दिव्य कर्म को समझता है वो वापस इस धरती पे प्रकट नहीं होता, वो मेरे धाम में शाश्वत सेवा करता है। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग के वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से भगवान नवनीत चोर है, वस्त्र हरण भी करते हैं, फिर अनेक जन्मों के पाप भी चोरी करते हैं। सोचिए आज की तारीख में सोशल मीडिया में बड़े बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, एक्टर हैं, जिनके 50 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन फॉलोवर्स हैं। आजकल इंस्टाग्राम बड़ा प्रसिद्ध है, आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? क्या बात, आजकल का जमाना है जहां पर लोगों को शालिग्राम नहीं मालूम लेकिन इंस्टाग्राम मालूम है। कितने लोग को शालिग्राम नहीं मालूम? उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, शर्माओ मत। भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप जो एक पत्थर के रूप में आते हैं, हाँ, उसको शालिग्राम बोलते हैं, भगवान की पूजा होती है, साक्षात भगवान है। तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, क्या आपका कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेस आपका पाप लेने को तैयार है? कोई है आप में से? आप में से कोई है जो बोलेगा मैं सबका पाप स्वीकार कर लूंगा, मैं नरक में भोगने को तैयार हूं? कोई है? केवल भगवान कृष्ण ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर कहा गया है, अनेक जन्मार जित पाप चोरम, वो भी एक दिन का पाप नहीं। जिसे बहुत बार लोग दोस्त लोग जाते हैं होटल में, फिर दारू पीने लगते हैं, तो एक लड़का होता है बोलते नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, इसमें पाप लगेगा। तो दोस्त लोग क्या बोलते हैं? अरे कुछ नहीं यार, हमें है ना, पी लो। तो नहीं 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 पाप लगेगा। अरे कुछ पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा तो हम ले लेंगे, ऐसा बोलते हैं। एक दिन के लिए नहीं, अनेक जन्मों के पाप अगर कोई लेने के लिए तैयार है तो बात करो। लेकिन यहां पर कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि मैं अनेक जन्मों के पाप को ले लूंगा। फिर दूसरे श्लोक में वापस इस चोर की वर्णन होते हैं, श्री राधिकायस्य हृदयस्य चोरम नवाम्बुध श्यामलकांति चोरम पादाश्रितानां च समस्त चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। फिर और एक बार कहा गया है यहां पर, और एक बार भगवान कृष्ण को कहा गया, और क्या चोरी करते हैं भगवान? श्री राधिका मतलब श्री राधा रानी का हृदय चुराते हैं। केवल श्री राधिका का नहीं, समस्त गोपियों का, समस्त ब्रजवासियों का, यहां तक कि गोपियां जो है कृष्ण को देखने के लिए इतनी आतुर है कि वो ब्रह्मा जी को गाली देते, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता है। ब्रह्मा जी को बोलते कैसा मूर्ख आदमी है, उसने ये पलके बनाई। पलक, हम लोग हर सेकंड में, कुछ सेकंड में पलक झपकते हैं ना, एक मिनट में कितनी बार पलक झपकते हैं हमको मालूम भी नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को देखना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में पलक झपकाना पड़ता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी परिस्थिति क्या है, जैसे ही भागवत प्रवचन चालू हो जाते तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमको नींद आते लगती है। तो ये अंतर है भगवान के शुद्ध भक्तों में।
और हमारे में। तो श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम, और क्या चोरी करते हैं, जैसे यहां पर बारिश हो रही है तो बारिश में देखो सुंदर जो मेघ है, जो क्लाउड है, क्या बोलते हैं उसको, नवाम बुध श्यामल कांति चोरम, जो सुंदर जो व्हाट डू से क्लाउड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बादल, बादल का रंग जो है ना, देखो आप स्काई का रंग देखो कौन से कलर का है, ब्लू भी है और काला भी है। हाँ, तो इस रंग को मराठी में बोलते हैं घन श्याम, इसके लिए भगवान का नाम है घन श्याम। तो भगवान वो रंग भी चोरी करते हैं, तो भगवान को कहते हैं काले, लेकिन भगवान वास्तविक में काले नहीं है। वो किस प्रकार से काले हैं, बादल के समान काले हैं, मतलब ब्लू भी है और काले भी है। इंग्लिश में कहते हैं कृष्णा इज अ ब्लूइश ब्लैक बॉय। तो बहुत बार हम ये गाना सुनते हैं, यशोमती मैया बोलते हैं मैं क्यों क्या, ओ क्यों गोरी मैं क्यों काला, ऐसा बोलते हैं ना। तो लोग को लगता है कृष्ण एकदम काले रहेंगे, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग काला मतलब एकदम काला। यहां पर भगवान कृष्ण की सुंदरता इतनी सुंदर है भगवान, कि भगवान का नाम है कृष्ण, कृष्ण मतलब आकर्षति इति कृष्ण, इतने भगवान सुंदर है। तो एक बार की कथा है, हमारे इस्कॉन मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड में है आपको मालूम होगा, तो अफ्रीका में भी मंदिर है। तो एक बार अफ्रीका के मंदिर में ऐसी पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, तो वहां पर अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे उसको जिप्सी बोलते, जिप्सी, तो अचानक वो किसी भी जगह पे अटैक करते हैं, बंदूक लेके आ जाते हैं और चोरी डकैती करते हैं। तो मंदिर में घुस गए, और जैसे ही मंदिर में घुस गए तो पुजारी के सर पे बंदूक रख दी, बोले चुपचाप पूरा पैसा दे दो नहीं तो ठोक देंगे। तो पुजारी ने कहा कि देखो भाई मंदिर है, हम खुद दान दक्षिणा मांगते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो बोले क्या करते हो, बोले यहां पे देखो हमारे भगवान है राधा और कृष्ण, हम उनकी पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति थे वो भगवान के दर्शन लेता है और देख के ही मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। बोले क्यों, क्यों, बोले बहुत खुश हुआ। बोले क्यों, आपके भगवान भी काले हैं और हम लोग भी काले हैं, तो एक समानता अच्छी लगी। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है काला तो ठीक है, उससे भी बड़ी बात क्या है, काले आदमी की गर्लफ्रेंड गोरी, तो ये बड़ी बात, ये बहुत अच्छी बात है, दिल खुश कर दिया आपको, हम कोई दुख नहीं देंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, कभी भी कुछ हमारी जरूरत हुई तो बता देना। तो देखिए भगवान की लीला देखिए, किस व्यक्ति को कैसे भगवान अपनी सेवा में लगा सकते हैं, उसको कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, कोई सोच नहीं सकता। आए थे ये लोग क्या करने के लिए, चोरी डकैती करने, लेकिन भगवान को इतना सुंदर रूप देख के बोले ये भी काले हम भी काले, ये तो हमारे बिरादरी वाले तो छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से वो लोग चले जाते। तो इस श्लोक में हमने देखा, फिर आता है पादाश्रिता नाम च समस्त चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। तो भगवान श्रीमती राधा रानी का और इस सुंदर मेघ यानी कि बादल का भी ये करते हैं, और भगवान के चरणों का जो आश्रय लेता है, पादाश्रिताम समस्त अनेक जन्मों के पाप चले जाते हैं। तो ये दो श्लोक में पीछे का वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड बता दिया, अभी आगे के तीन और चार श्लोक में और क्या क्या भगवान करते हैं वो बताया गया है। क्या आप सुनना चाहते हो, अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो हरि बोल। चलो फिर तीसरे श्लोक में अंदर आता है, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम ये करो तो भिक्षुम पति गेहहीनम केनोपि हो भीषण चौर इद्रिक दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्रयेपि। तो यहां पर भगवान की और एक्सपर्टीज के बारे में कहा गया है। तो बोलते कि भगवान इतने एक्सपर्ट है कि ध्यान से रहना, क्यों, क्योंकि जो अमीर है उसको गरीब बना देते और जो गरीब है उसको अमीर बना देते। लोग मंदिर में आते हैं, इसके लिए मैंने प्रश्न पूछा ना, लोग मंदिर में आते तो क्या मांगते हैं? हे प्रभु अच्छी गाड़ी दे देना, हे प्रभु अच्छी नौकरी दे देना, हे प्रभु एक सुंदर पत्नी दे देना जो मेरा सुने। तो इस प्रकार से हम भगवान से मांगने आते हैं और भगवान को बोलते हैं कि दे दो दे दो दे दो। तो हम जो है देना बैंक है, हम केवल लेना जानते हैं, लेकिन भगवान जो है वो देना बैंक है, केवल देते रहते। लेकिन याद रखो भगवान कृष्ण हमारे पिताजी है, पिता आपको वही देंगे जो आपको जरूरत है, बराबर है। जैसे कोई छोटा बच्चा पान पट्टी के दुकान पे जाके बोलेगा एक 10 रुपए का सिगरेट दो, तो पान पट्टी वाला बोलेगा हाँ 10 रुपया, हाँ कौन सा चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, वो पूछेगा ये चाहिए वो चाहिए, तो बच्चा जो मांगेगा दे देगा। लेकिन अगर पिता के पास जाएगा पिताजी 10 रुपया दे दो, बोले बेटा क्यों चाहिए, नहीं वो सिगरेट पीना था, तो पिताजी क्या करेंगे 10 रुपया नहीं देंगे, उसको एक चाटा देंगे, क्योंकि पिता को मालूम है कि ये उसके शरीर के लिए हानिकारक है। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अकिंचनी वृत्त, जो व्यक्ति गरीब है उस गरीब व्यक्ति को अमीर बना देंगे और अमीर को गरीब बना देंगे। कोई उदाहरण, सुदामा इतने गरीब थे लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको अपनी कृपा से महल प्रदान कर दिया। और फिर पांडवों की कथा आती है, पांडव इतने बड़े राजा थे लेकिन भगवान की भक्ति करने से क्या हुआ, इतने भगवान उनके साथ में थे फिर भी क्या हुआ, उनको राज्य नहीं मिल रहा था और फिर भगवान की कृपा से उनको ये मिला। तो इस प्रकार से यहां पर कहा गया है। फिर आता है चौथा श्लोक, यदि ये नामापि हरति अशेषम गिरि प्रसारण अपि पापराशिन आश्चर्य रूपो नानु चौर इद्रिक दृष्ट्रा श्रुतो वा न माया कदापि। तो इस श्लोक में और एक व्याख्या दी गई है, जैसे यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो, हाथ उठाए, ऐसा कोई व्यक्ति है? अगर है तो बता दो, हम आपके चरण स्पर्श करेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि जो व्यक्ति है जिसने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, मानो पहाड़ों के समान एक पर्वत के समान इतना पाप भी किया हो, केवल भगवान के नाम मात्र से वो पर्वत गायब हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, इसके लिए हम हरिस्कॉन में कहते हैं कि आप लोग आइए भगवान के नाम का जप कीजिए। बोलो हरे कृष्णा हरे। तो हम लोग बार बार क्यों ये बोलते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि भगवान के नाम मात्र उच्चारण करने से आपके सभी पाप मुक्त हो जाएंगे, कितने बड़े क्यों ना हो, पहाड़ों जितने क्यों ना हो, लेकिन वो पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। तो यहां पर ये कहा गया है। और कलि संतोर्मनिषद उपनिषद में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम एकमेव उपाय है अगर आपको इस कलयुग से वापस आना है। तो यहाँ पे हमारा बुक स्टॉल है, आपको अगर भगवद गीता या कोई किताब खरीदनी है तो ले सकते हैं। और यहाँ पे जपमाला भी है, जो जप नहीं करते आज से अगर जप करना चाहते हैं, बहुत ही सुवर्ण मौसम है और बहुत ही विशेष मास है पुरुषोत्तम मास, अगर जप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जपमाला लीजिए, आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से जप करना है। और अभी 12 बजे जब कीर्तन होगा तो कीर्तन में भी आप भाग लीजिए। फिर आता है पांचवा श्लोक, पांचवा और छठे श्लोक में भगवान और क्या क्या करते हैं वो भी बताया है। पांचवे श्लोक में कहा गया है, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणम श्रुत्वा मम सर्वमेव पलास्त्यसे कुत्र द्रुतोद्य चौर त्वं भक्ति दामना सी मया निरुद्ध। ये कह रहे कि ये जो भगवान है चोर तो है, लेकिन और क्या क्या छीन सकते हैं, और क्या क्या छीन सकते हैं वो भी लिस्ट बताया है। क्या है? धन। सोचो आप भगवान के पास आते और भगवान बोलते मेरे पास आओगे तो धन चला जाएगा, कितने लोग आएंगे, बोलेंगे यहां यहां नहीं जाएंगे, हम बाकी देवी देवताओं के पास जाएंगे। इसके लिए शास्त्र में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के पास लोग सोच समझ के आते हैं, क्योंकि मैंने बताया वो पिता है। अगर आपके भक्ति के लिए अनुकूल जो है वो आपको मिलेगा, अगर भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो आपको वो नहीं देंगे। जैसे धनम च मानम, मानम मतलब अहंकार, रिस्पेक्ट। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, उनका पुत्र था ध्रुव। ध्रुव महाराज की कथा सुनी है? तो ध्रुव महाराज को अपने पिता के गोद में बैठना था, लेकिन उनकी जो माँ होती है, जो सौतेली माँ, वो कहती है कि आप मेरे पति के पैर पे नहीं बैठ सकते, आपको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो जैसे ही वो सुनता है, इतना उसको दुख होता है, उसको बहुत बड़ा दर्द होता है, उसके हृदय को चोट पहुंचती है, और भगवान के पास जाता है और भगवान की भक्ति करता है और उसको भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो धनम से मानम से तथेन्द्रियाणी, तो भगवान अलग अलग चीजों से भगवान अपने भक्तों का यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज की कथा आती है, और फिर दामोदर लीला की कहा आती है कि भगवान धन मानव वो तो ले ही लेंगे, लेकिन आपके जीवन में जो बंधन है, उस भक्ति पाश का जो बंधन से आपको मुक्त कर देंगे, इस भौतिक जगत के जो बंधन से आपको मुक्त करेंगे। तो यहां पर ये कहा गया है। फिर छठवें श्लोक में कहा गया है, छिनत सी घोरम यम पाश बंधम, भिनत सी भीमम भव पाश बंधम, चिनत सी सर्वस्य समस्त बंधम, नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। बंधम मतलब क्या? बांधना। जैसे किसी को बंदी बनाया गया, किसी के हाथ में हथकड़ी लगाई गई, किसी को बांधा गया, उसको कैसा लगेगा? सोचिए, यहां पे इतने सारे लोग हैं और किसी व्यक्ति को यहां से रस्सी से बांधा गया तो कैसा लगेगा? वो लोग को बोलेगा, अरे भाई इधर आओ, मेरा हाथ खोलो। लेकिन कौन उसको खोल सकता है? जिसके हाथ खुले हो वही आदमी खोल सकता है ना। तो इस पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बंधा नहीं है, क्योंकि ये भगवान की माया की शक्ति इतनी प्रबल है, हर व्यक्ति बंधा हुआ है। और कौन बांधता है? तीन गुणों से बंधता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से। तो कोई भी व्यक्ति बंधा नहीं गया है, केवल एक व्यक्ति इस तीनों गुणों से परे है, वो भगवान कृष्ण है। और केवल भगवान कृष्ण की कृपा से हम तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एतान संतिते। तो भगवान अपनी शक्ति से आपके गले में जो पाश है ना, जैसे कोई मर जाता है तो अगर उसने बहुत पाप किए तो यमराज या यमदूत लोग आते हैं, उसके गले में एक फंदा डालते हैं, जैसे फांसी का फंदा होता है ना, और उस आत्मा को ऐसा घसीट के लेके जाते हैं, यम पाश बोलते हैं उसको। और दूसरा पाश क्या है? भव पाश। भव पाश मतलब इस भौतिक जगत का जो रोग है, भव रोग, और इस भौतिक रोग की जो बीमारी है उससे, ये दोनों चीजों से अगर आपको मुक्त होना है तो केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। एक है यमपाश, जो भगवान कृष्ण का नाम लेता है और भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जो गले में कंठी माला पहनता है, ऐसा कहा जाता है यमदूत कभी नहीं आएंगे, केवल विष्णु दूत आएंगे। और यहां पर यमुना जी के आप दर्शन करोगे, ऐसा कहा जाता है कि जो यमुना के दर्शन करता है, यमुना के स्नान करता है, यमुना से प्रार्थना करता है, तो यमुना जी के भाई कौन है? यमुना जी के भाई है यमराज। तो यमराज ने भाई दूज के दिन अपनी बहन को वादा किया था कि मैं उनको कुछ नहीं करूंगा। तो अभी आप सोच लो क्या करना है। जिनको यम को देखना है तो देखिए, जिनको यम और यमदूत के दर्शन नहीं लेने हैं वो क्या करे? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो इस प्रकार से पहले छह श्लोकों में हमने वर्णन देख लिया कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं और भगवान किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ चोर है। तो अभी पता चल गया कि इतना बड़ा चोर है, और पता चल गया कि किस प्रकार से भयंकर भयंकर चीजों को भगवान चुरा लेते हैं। अभी जो भक्त है उसको पता चल गया कि अरे भाई मुझको तो यमपास से मुक्त होना है, मुझको तो भवपास से मुक्त होना है और मुझको अनेक पापों से मुक्त होना है। होना है कि नहीं होना है तो जोर से बोलो हरि बोल। तो अगर मुक्त होना है तो अभी इस चोर को ढूंढना पड़ेगा ना। तो अभी चोर को ढूंढने के लिए यहां पर अभी बिल्वा मंगल ठाकुर लास्ट दो श्लोकों में कहते हैं कि किस प्रकार वो उस चोर को पकड़ते हैं और फिर उस चोर को जेल में डाल देते हैं। तो अभी सातवां श्लोक हम देखते हैं। मन मानसे तमसा राशि घोरे कारागृहे दुख मया निबद्धे लभस्व हे चौर हरे चिराय स्व चौर दोषितम च एव दंडः। तो कह रहे कि ये जो मेरा मन है, मेरा जो हृदय है, बहुत अंधकार है, बहुत गंदगी है उसमें, और उस गंदगी को साफ करना केवल एकमात्र उपाय क्या है, जब भगवान कृष्ण आप मेरे हृदय में आओगे। जब आप इस हृदय में आओगे तो क्या होगा, मेरा जो हृदय हो वो परिवर्तन हो जाएगा और मैं अपने हृदय में आपको बसा लूंगा। तो हे कृष्ण, हे चोर, हे हरि, आप कृपा करके मेरा हृदय चोरी कर लीजिए, क्योंकि आपका नाम हरि, हरि मतलब जो सब हरता है, तो कृपा करके आप क्या कीजिए, मेरे हृदय को चुराइए। तो फिर आप इस प्रकार से मेरे हृदय में आकर आइए और मेरे हृदय में जैसे ही आएंगे मैं आपको दंड दूंगा। क्या दंड दूंगा, मैं आपको मेरे हृदय रूपी जेल में आपको बंद कर दूंगा। जैसे पिक्चरों में होता है ना, दफा 302 के तहत आपको उम्र कैद की सुवर सुनाई जाती है। तो अभी चोर को पकड़ लिया है, हृदय में बंद कर दिया है और अभी ताला लगाया जा रहा है और ताला लगा के बोल रहा है कि अभी देखता हूं कैसे भागेगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको। तो आठवें श्लोक में कहा गया है कि देखो अभी हमने तुमको पकड़ लिया, अभी इस जेल से भाग के कहां जाओगे, मैं आजीवन तुमको इस हृदय में ही रखूंगा। और फिर आखिरी श्लोक में वो भगवान कृष्ण को गुणगान कह रहे हैं। इस ये है बिल्वा मंगल ठाकुर और आखिरी श्लोक में वो कह रहे हैं, कारागृहे वसति सदा हृदये मदीये मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलम स्यान् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि सतांतरेपि सर्वस्व चोरम हृदयं नाहि मोचयामि। तो बोल रहे कि हे कृष्ण, अभी मैंने आपको पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, प्रेम रूपी पाश में। भगवान को बांधने का केवल एक उपाय है, आप जोर जबरदस्ती से ताकत से भगवान को नहीं पकड़ सकते, अपने बुद्धि से, अपने योगा से, अपने ज्ञान से, अपने बल से भगवान को नहीं पकड़ सकते। केवल एक मेव उपाय है, वो क्या है, प्रेम भक्ति। और ये प्रेम का जो पाश है ना, इस प्रेम के पाश से ही पकड़ सकते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण है मैया यशोदा। बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है दामोदर लीला की, जब भगवान कृष्ण माखन चुराते थे तो मैया कहती कि अरे ये माखन क्यों चुराता है, मैं खुद माखन बनाऊंगी। और मैया यशोदा माखन बनाती है, लेकिन कृष्ण बड़े नटखट थे, माखन की मटकी फोड़ के खुद मक्खन खाते हैं और फिर बंदरों को खिलाते हैं और फिर बाकी का मक्खन इधर उधर फेंक देते हैं। और जैसे ही मैया यशोदा को पता चलता है कि ये नटखट इतना इतना मस्ती कर रहा है, उसको दंड देना चाहिए, तो मैया यशोदा डंडा लेके कृष्ण के पीछे भागती है। और अभी कृष्ण डर जाते हैं, भागते हैं भागते हैं, और मैया यशोदा पीछे भागती है और उनको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद बोलते हैं कि तू बहुत शरारती हो गया है, बहुत इधर उधर मटकी फोड़ता है, अभी देखती हूँ कैसे मटकी फोड़ता है, तुझको मैं बांध दूंगी। तो जो उखल होता है ना घर पे, जिसे मसाला पीसते हैं, अभी तो मिक्सर में पीसते, पहले के जमाने में उखल था, तो उखल से भगवान को बांधने का प्रयास किया जा रहा था। कितनी सारी रस्सी लाई लेकिन भगवान बंद नहीं रहे। उनके घर में 900,000 गाय थी, सभी गाय को बांधने के लिए जितनी रस्सी थी उसको लाया, फिर भी नहीं बंधे। तो क्या हो रहा था, भगवान का पेट बढ़ रहा था, कुछ नहीं, रस्सी छोटी पड़ रही थी। फिर बाद में इतना प्रयास करने कर भगवान कहते कि चलो ये मेरी माँ इतनी प्रेम से कोशिश कर रही मुझको बांधने की, चलो बंध जाता हूं। और वो दो उंगली छोटी थी रस्सी, भगवान कृष्ण बंध जाते हैं। वो दो उंगली क्या है, पहला अपना प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। तो उसी प्रकार से भक्ति में हमको ये दो कार्य करने हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए। प्रयास में क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, 16 माला कर सके तो अच्छा है, और भक्तों का संग करना चाहिए, और इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में आना चाहिए, और यहाँ पर इस भक्ति पास से हम भगवान को अपने वश में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैया यशोदा ने किया। और इसी तरह से हम कहते हैं चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, तो सर्वश्रेष्ठ चोर कौन है, भगवान कृष्ण। तो ऐसे भगवान को हम बार बार नमन करते हैं। बोलो सर्वश्रेष्ठ चोर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो माखन चोर की, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग आ जाए तो कुछ टूटी हो गई हो, कुछ गलती हो गई, क्षमा कीजिए। तो प्रभु जी आगे का कार्यक्रम बताएंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अनंत राघव प्रभु। प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा, उसमें सभी जन डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। डांस करने का एक तरीका है, जब भी कीर्तन स्लो चलता रहेगा तभी हाथ जोड़कर और एक बार हाथ जोड़कर एक बार हाथ ऊपर कर एक पैर आगे एक पैर पीछे इस प्रकार नृत्य करना है। और जब भी डांस कीर्तन थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो राउंड बनाकर सर्कल बनाकर आप डांस कर सकते हैं। उसके पश्चात 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था है। सबसे विनती है कि कोई भी प्रसाद लेते बिना लिए घर ना जाइए, प्रसाद लेते हुए घर जाइए। हरे कृष्णा। अभी डांसिंग कीर्तन में भाग ले सकते हैं, आरती में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।
जरा माता फैन बंद करता है, माता जी फैन बंद। हरे